ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆದರಣೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಮೋಹನ್ ಆನಂದ್ ಭಾಯ್ ಜಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾ ವಿಷಯ ಹೇ ಅಂತಿಮ ಆಹುತಿ. ಭಾಯ್ ಜಿ, 1955 ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ, ಆಪ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕೇ ಹೇ, ಕಾನೂನ್ ಕೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇ ರೂಪ ಮೇ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೇ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇ ಆಯ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ಸೇವಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಭಿ ಭಾರತ ಕೇ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೋ ಕೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವಾಓ ಕೇ ಝೋನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಥೆ. 1973 ಸೇ ಆಪ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇ ಪೂರ್ಣಕಾಲೀನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇ, ದಿಲ್ಲಿ ಝೋನ್ ಕೇ ನಿಮಿತ್ತ ಜಿಮ್ಮೇವಾರ ಹೇ. ಆಪ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರೀಸ್ ಕೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇ ಎಡಿಟರ್ ಹೇ. ಆಪ್ 8 ಭಾಷಾಓ ಮೇ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ರಾಜ್ಯ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೇ ಲೇಖಕ ಏವಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇ, ಏವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರೀಸ್ ಕೇ ಅನ್ಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾಶನೋ ಕೇ ಭಿ ಲೇಖಕ ಹೇ. ಆಪ್ ಭಾರತ ಔರ್ ಭಾರತ ಸೇ ಬಾಹರ್ ಕೇ ದೇಶೋ ಕೀ ಯಾತ್ರಾ ಭಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇ ಪ್ರವಕ್ತಾ ಕೇ ರೂಪ ಮೇ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೇ, ಏವಂ ಬಡಿ ಬಡಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೋ ಸಂಬೋಧಿತ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೇ. 1981 ಮೇ ಆಪ್ ನೈರೋಬಿ ಕೇನ್ಯಾ ಮೇ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೇ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾ ಥೆ. ಆಪ್ನೆ 1985 ಮೇ ಯುಎಸ್ಎ ಯುಕೆ ಟ್ರಿನಿದಾದ್ ಔರ್ ಗಯಾನಾ ವೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಕೀ ಯಾತ್ರಾ ಕೀ ಹೇ. ಆಪ್ನೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರೀಸ್ ಕೀ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅಪೀಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ್ವಾರಾ ಸಂಗ್ರಹಿತ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ ಭಾರತ ಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಕಿಯಾ. ಅಂತ ಮೇ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಯಹಿ ಕಹನಾ ಚಾಹೂಂಗಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರ ವಚನ ರಚನ ಚತುರ್ ಮೃದು ಮಧುರ ಮಿತ ಭಾಷಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇ ಆಪ್. ಆಪ್ಕೋ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ತಹ ದಿಲ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜಬ್ ಹಮ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಕಹತೆ ಹೇ ಮುಝೆ ಆತ್ಮಾ ಕಾ ಸಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಹೇ. ಮೈ ಆತ್ಮಾ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಕೀ ನಿವಾಸಿ ಹೂ. ಮೈ ಆತ್ಮಾ ಶಾಂತಿ ಕೇ ಸಾಗರ ಪರಮಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕೀ ಸಂತಾನ ಹೂ. ಔರ್ ಅಬ್ ಹಮಾರಾ ಡ್ರಾಮಾ ಕೇ ಅನುಸಾರ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಮೇ ವಾಪಸ್ ಜಾನೆ ಕಾ ಸಮಯ ಆ ಗಯಾ. ಅಬ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಘರ್ ಚಲನಾ ಹೈ. ಪರ್ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಘರ್ ಮೇ ತೋ ನಹೀ ಬೈಠೆ ರಹನಾ ಹೈ, ತೋ ಬಾಬಾ ಕಾ ಜೋ ವರ್ಷಾ ಹೈ ಸತ್ಯುಗ ಕಾ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾ ಫಿರ್ ಉಸ್ಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ. ಅಬ್ ಹಮ್ನೆ ಪ್ಯಾರ ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೆ ಹಮಾರಾ ಮನ್ ಪ್ಯಾರ ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೆ ಚಲತಾ ಹೈ, ತೋ ಪ್ರೇಮ ಭರೆ ಹುವೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೆ ಪಹಲೆ ಫರಿಶ್ತಾ ಬನ್ನಾ ಹೈ. ಔರ್ ಫರಿಶ್ತಾ ಲೋಕ ಭಿ ಸೂರಜ ಚಾಂದ ತಾರೋ ಸೆ ಪಾರ ಹೈ. ಫರಿಶ್ತಾ ಉಡ್ತಾ ರಹತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ಪೈರ ಧರತಿ ಪರ ನಹೀ ಹೋತೆ. ಫರಿಶ್ತಾ ಸಬ್ಕೋ ಸುಖ ದೇತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮ್ನೆ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಮೇ ಪಹಂಚನಾ ಹೈ. ಆತ್ಮಾ ಸ್ವರೂಪ ಸೆ ಸರ್ವ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆತ್ಮಾ ಸ್ವರೂಪ ಸೆ, ಔರ್ ಫಿರ್ ಹಮೇ बिल्कुल नई दुनिया में आना है जहां पर सब कुछ नया ही नया है। तो हमारा जो ये सारा कार्य है, शिव बाबा ने एक यज्ञ के रूप से रचा है। दुनिया में भी जब कोई आपदा आती है तो यज्ञ रचते हैं और उसमें आहुति डालते हैं। कुछ ब्राह्मण यज्ञ को चलाते हैं पर वह यज्ञ तो बाबा के इस महान यज्ञ के रुद्र ज्ञान यज्ञ के यादगार है। तो ये जो बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ शिव बाबा ने रचा है, सारी दुनिया को शुद्ध बनाने का, हम सब, हम और आप जो यहां बैठे हैं और भी 8,700 यज्ञ ज्ञान यज्ञ बाबा ने सारे विश्व में रचे हुए हैं और ब्राह्मण उनकी संभाल कर रहे हैं, उस यज्ञ की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए, रखने के लिए आहुति देते आ रहे हैं और बीच बीच में हम सब मधुबन जिसको महायज्ञ कहते हैं, तो इस महायज्ञ में भी बाबा ने विधि रची हुई है कि हम सब टर्न बाय टर्न इस महायज्ञ में भी आते हैं और हर बार यही संकल्प लेके आते हैं कि इस महायज्ञ में हम महाआहुति देंगे। अपने अपने यज्ञ में हम आहुति देते हैं और जब इस महायज्ञ में आते हैं तो महाआहुति देते हैं और स्वयं सारे यज्ञ के रचयिता बाप दादा हमारी इस स्नेह युक्त आहुति को स्वीकार करते हैं। उन यज्ञों में अग्नि प्रज्वलित होती है और इस यज्ञ में योग की अग्नि प्रज्वलित होती है और बाबा ने बताया हुआ है कि ये यज्ञ तब पूरा होगा जब सारे पुराने विश्व की इसमें आहुति पड़ेगी और विनाश ज्वाला भी इसी रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित होगी और उसको प्रज्वलित करने के निमित्त बाबा ने बच्चों को बनाया है, क्योंकि इस यज्ञ का जो प्रसाद निकलेगा अंतिम आहुति के बाद वो बच्चों को ही मिलना है। बाबा तो न्यारा और प्यारा है। ये आहुति जो है हम प्रेम से देते हैं। हमें किसी ने बंधन में नहीं डाला है, जैसे दुनिया में भी मिलिट्री होती है, वो भी अपने देश के लिए जान निछावर करते हैं, किंतु वो तो नौकरी करते हैं, बंधन में। हम अपनी खुशी से यहाँ प्रेम से अपनी मर्जी से आए हैं रामानुसार, और हमारी जो समर्पण है, हमारी जो तन मन धन की संपूर्ण आहुति है, वो लगन की अगन से होती है। जैसे एक परवाना, परवाना आप देखो यादगार है बच्चों का, कि परवाना अपनी खुशी से आके क्षमा पर फिदा हो जाता है, अपने प्राण भी समाप्त कर देता है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी यज्ञ की रचना और यज्ञ में आहुति दे के उसको चलाते रहना, ये अविनाशी यज्ञ है, जब तक कार्य पूरा नहीं होगा चलता रहेगा, और अंत में आके संपूर्ण आहुति देते हैं। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि कई परवाने होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं क्षमा के इर्द गिर्द, कई तो सीधे सीधा हो जाते हैं और कई कुछ चक्कर लगा के सीधा होते हैं, और कई चक्कर लगा के देखते हैं सेक बहुत है, गर्मी है, वापस चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से चेतन परवाने भी ऐसे भी होते हैं कमजोर, जो आते हैं चक्कर लगाते हैं, फिर देखते हैं सेक बहुत है, आहुति देने के लिए हाथ भी बढ़ाते हैं, आधी आहुति यज्ञ में चली जाती है, आधी बाहर गिर जाती है, अधूरी आहुति देते हैं, वो बिखर भी जाती है। बाबा कहते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्ञान हमें सेंसिबल बनाता है। सेंसिबल का मतलब जिसको अच्छे और बुरे की, फायदे और नुकसान की समझ हो, लेकिन ये सेंसिबल भी कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि में द्वंद्व या दुविधा पैदा कर देता है। आहुति देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, फिर सोचते हैं कि कुछ चीजें तो पुरानी दुनिया में भी काम आ जाएंगी, क्यों ना उसको रख ले, तो आधी आहुति देते हैं, आधी बचा लेते हैं। कारण क्यों क्या, सेंसिबल व्यक्ति की बुद्धि में प्रश्न पैदा होता है। आप जानते हैं पता नहीं विनाश कब आएगा, मेरे को कौन संभालेगा, कब तक जीना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आज भी कहा है कि एक है ज्ञान, ज्ञान मैंने जानना, और दूसरा है विज्ञान योग, योग मैंने भूलना। तो अब हमें क्या याद रखना है, अगर वो याद रखेंगे तो बाकी आप ही भूल जाएगा। परवाना कभी परवाह नहीं करता, उसका नाम ही होता परवाना, जिसको परवाना। तो इसलिए सेंसिबल से एक कदम और आगे बढ़ के बाबा कहता है असेंसफुल। असेंस होता है सार, सार युक्त बनना। सेंसिबल विस्तार युक्त होता है और असेंसफुल सार युक्त होता है। तो सार मैंने आत्मा, अगर हम और सब चीज को हटा दें तो आत्मा ही बचती है। परम धाम में आत्मा ने ही जाना है संस्कार लेकर, सतयुग में भी आत्मा ने ही आना है संस्कार लेकर। आत्मा बचती है, और चीजों को खोने की भय और चिंता रहती है। बाबा ने कहा है इंश्योर कराते हैं, लेकिन आत्मा को इंश्योर कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सदा है ही है। इसलिए आहुति हम देते आए हैं, परंतु यदि समय की सुई को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे। अब समय की सुई, अब तो दुनिया भी बोल रही है, आसार भी बोल रहे हैं कि ये यज्ञ अब समाप्ति की ओर है। ये यज्ञ बाबा ने किसी लक्ष्य से रचा है, हम सबको वो लक्ष्य पता है। ये एक यात्रा है, ये कोई मंजिल नहीं है। हम लोग याद की यात्रा पर हैं, तो यात्रा की मंजिल क्या है। तो बाबा कहते हैं अब अगली मंजिल तो फरिश्ता बनने की है, उससे अगली मंजिल परम धाम में जाने की है, और उससे अगली मंजिल फिर नया चक्कर शुरू होगा उसमें आने की है। तो यात्री का ध्यान उस स्टेशन की तरफ नहीं रहता जिसको वो छोड़ के आया है, और उसको और भी नहीं देता जो रास्ते में आता है, उसका ध्यान मंजिल की ओर होता है। इसलिए हमने आज का विषय अंतिम आहुति रखा है। आहुति तो हम सब देते ही आए हैं, परंतु अंतिम आहुति आप जानते हैं कि एज ए ब्राह्मण हर एक को मुझे क्या आहुति देनी है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का भी एक संसार होता है, और हम सबका अपना अपना संसार है, अपनी अपनी दुनिया है। और वो संसार संसार हमने अपने संकल्पों से रचा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं मैं, मेरा, मेरे, फिर सूक्ष्म में स्वभाव, संस्कार, आदतें, ये सब हमारी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं कि सारे विश्व को परिवर्तन से पहले हमें उस संसार को परिवर्तन से पहले हमें अपने संसार को परिवर्तित करना है। तो क्या मतलब हुआ कि जो सिक्का आने वाली दुनिया में चलना है उस सिक्के को ग्रहण करना है और जो छोटा और पुराना सिक्का है जो वहां नहीं चलना है उसको जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना है, क्योंकि छूटेगा तो वैसे भी किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, बाबा ने इन एडवांस बताया हुआ। तो प्यारे बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया, आदि रत्नों ने क्या किया के मर जीवा बन गए। बाबा सब कुछ तेरा है, तो इसलिए सबसे पहला काम अंतिम आहुति की तैयारी के लिए मेरे को तेरा करना है, अर्थात मैं निमित्त हूं। ये शरीर भी निमित्त है, ये साधन भी निमित्त है, मैं नहीं हूं। क्योंकि जो ही हमने पुराना मैं कहा तो आपके पास पुराने संकल्पों के, पुराने संस्कारों के भूत घेर लेंगे आपको, और जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो पीछे से खींचेंगे। इसलिए बजाय इसके कि हम कहें ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, तो छोड़ने की माला रटेंगे तो वो ज्यादा याद आएगा। इसलिए ये भी पाओ, ये भी पाओ, ये भी पाओ, तो नई चीजों की ग्रहण करने की धारणा करेंगे तो आप ही छूट जाएगा। किसी को एकदम 100% सतोगुनी दुनिया में जाने का चांस हो, सब कुछ नया, वो भी 21 जन्मों के लिए सुखदायी, ना वहां रोग, ना वहां शरीर का कोई अंग खराब, कोई भी चीज डिस्टर्ब करने वाली नहीं, तो वो तो खुशी से उसको छोड़ेगा। और हम सब इस बात को समझकर ही ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा एक तरफ पुण्य कराता है, यज्ञ को चलवाता है, और दूसरी तरफ जितना जितना हम आहुति देते हैं उतना उतना ही हम दूसरों से दिलवा सकते हैं। जिन्होंने संपूर्ण आहुति दी उनसे हमें संपूर्ण आहुति की प्रेरणा मिलती है। जो अधूरी आहुति देते हैं वो दूसरे को भी अधूरी आहुति ही दिलवा सकते हैं। इसलिए प्रश्न उठता है कि अंतिम आहुति हमें कब देनी है, क्या लास्ट घड़ी में देनी है। अव्वल तो लास्ट घड़ी का पता नहीं कब आ जाए, लेकिन चलो ये सोचे कि जब लास्ट घड़ी आएगी हम दे देंगे, है तो ये धोखा। परंतु अगर लास्ट घड़ी में आहुति देंगे तो दूसरों से कब दिलवाएंगे। तो ब्राह्मण का तो ये काम है कि आहुति में देखो बाबा ने आहुति दी, आज हम कितने हो गए हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। और आहुति तो सिंपल है, किस चीज की देनी है, एक तो मेरेपन की और एक पुरानेपन की, यानी हम जो कुछ भी करते हैं बाबा को अर्पित कर दे, अव्यक्त बाप दादा को सामने लाए अपना संकल्प, अपना बोल, अपना कर्म अर्पित कर देंगे, समर्पित कर देंगे, एक तो हम निमित्त बन गए, मेरा नहीं रहा, और दूसरे जिम्मेवार बाबा हो गया। घर में भी किसी बड़े से हम पूछ को बता देते हैं हम ये कर रहे हैं, और वो गाइड कर देते हैं ऐसे करो। उसके बाद जैसा भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर नहीं रहती, हमें वो कार्य हुआ उसका फिर संकल्प पैदा नहीं होता कैसा हुआ क्यों हुआ, समर्पित कर दिया। यज्ञ में भी ऐसा ही होता है, जब आप किसी चीज की आहुति दे देते हैं तो अग्नि उसको स्वाहा कर देती है, उसके बाद उसका नामो निशान पुराना नहीं रहता, सब कुछ बदल जाता है। अग्नि एक ऐसा तत्व है, और सिर्फ अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो सफाई करता है, शुद्धिकरण करता है, पर खुद सदा साफ रहता है। और जितने भी तत्व हैं वो शुद्ध करेंगे, खुद में खराबी आ जाएगी। पानी में आप कपड़ा धोएं, कपड़ा साफ पानी मैला, हवा में आप कुछ करें हवा खराब हो जाती है, धरती भी खराब हो जाती है, किंतु अग्नि तो बाबा ही इसलिए यज्ञ रचते हैं। और ये योग अग्नि में हमें कहते हैं आहुति दो। अब आप देखिए आहुति में स्वाहा होता है, आहुति का मुख्य शब्द है स्वाहा। अब बाबा कहता है स्वाहा का क्या मतलब हुआ कि उसके बाद वो चीज भस्मीभूत हो जाती है, राख हो जाती है, और जैसे राख के अंदर कभी कुछ उगता नहीं है, इसी प्रकार से आपने जो स्वाहा किया वो आपको दोबारा कभी याद नहीं आएगा, उसका संकल्प नहीं आएगा, उसका स्वप्न नहीं आएगा, खत्म। तो बाबा स्वाहा भी क्या करवाता है, बाबा कहता है कि मैं पुराने संस्कारों को स्वाहा कराता हूँ, पुराने कर्म बंधनों को स्वाहा कराता हूँ, पुरानी देह की अटैचमेंट को स्वाहा कराता हूँ। ऐसा तो नहीं हम पुरानी देह छोड़ देते हैं तो आगे हमको देह ही नहीं मिलती, अरे बाबा कहते चमकीली ड्रेस मिलती है, फिर गोल्डन ड्रेस मिलती है, ये तो सबसे घटिया वाली है। इसलिए अगर हमें टेस्ट करना हो कि हमारी आहुति कहाँ तक पूरी हुई है, तो बाबा ने बताया है, आज भी बताया है, इच्छा मात्रम अविद्या। अपना पुरानी दुनिया की कोई भी इच्छा रखना, आकांक्षा रखना, मोह ममता रखना, अर्थात अभी माया को पहचाना नहीं है, और अगर पहचाना है तो उसको छोड़ने की शक्ति नहीं है, असेंसफुल नहीं है, सेंस है ये छोड़ना है ये धारण करना है। तो इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, या यूं कहें हद की वैराग वृत्ति कि जैसे किसी राजा की नजर धरती पर गिरी हुई किसी चीज पर नहीं पड़ती, आज भी कोई तथाकथित वीआईपी होता है तो कारपेट बिछाते हैं तो उसके पांव धरती पर न पड़े। तो बाबा कहते हैं कि गिरी हुई चीज अर्थात मिट्टी की बनी हुई चीज, पुराने पांच तत्वों की बनी हुई चीज में आंख न डूबे, कमल की तरह रहे, तो यह बेहद की वैराग वृत्ति। तो हमारा सारा ज्ञान वैराग का नहीं है, त्याग का नहीं है, संन्यास का भी नहीं है, हमारा सारा ज्ञान प्रेम का है। हम सब पिछली मुरली में बाबा ने क्या कहा, दो ही शब्द कहे कि बाबा के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। आप सबके दिल में कौन है जो हम सबको खींचकर यहाँ लाए हैं? जो कहते हैं बाबा है वो हाथ उठाओ, देखो सभी हाथ उठा दो। तो प्रेम का सौदा है। अब देखिए, हमने बाबा से प्रेम किया तो बाबा ने अपना सब कुछ हमें दे दिया और हमारा घटिया बटिया भी लेके खलास कर दिया, हमको सतयुग में भेज दिया। सतयुग में प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। त्रेता में भी थोड़ा सा कम, थोड़ा सा, पर प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। आत्माओं का नेचुरल प्रेम है। द्वापर में क्या हुआ, हमने प्रेम की डेफिनेशन थोड़ी बदल दी। परमानेंट चीज जो आत्मा है उससे हम बॉडी के साथ प्रेम में लग गए, क्योंकि बॉडी दिखती है, आत्मा दिखती नहीं है। थोड़ा सा लगे आत्मा भी रही, बॉडी भी रही। धीरे धीरे हमारा प्रेम शरीर में हो गया और शरीर का अर्थ है शरीर विनाशी, तो शरीर के संबंध भी विनाशी। पता है आत्मा को एक जन्म के बाद शरीर बदलना है, संबंध भी बदलने हैं, परंतु इतना प्रेम शरीर के संबंधियों से, जो बाबा बंदर का मिसाल देता है कि बंदर मरे हुए बच्चे को भी बंदरी पकड़ के चलती है। आजकल भी कोई गाय भैंस दूध नहीं देती तो उसके मरे हुए बच्चे की खाल उसके आगे रख देते हैं, उसको चाटती रहती है और दूध देती रहती है। अब सोचो, फिर पैसे से प्यार, साधनों से प्यार, व्यक्तियों से प्यार, वस्तुओं से प्यार, आत्मा का प्यार खत्म। तो वो जो प्यार था एक बाबा से और फिर बाबा की एक रचना से, आत्माओं से, वो बिखर गया। अब कहते हैं एक दिल के टुकड़े हजार हुए। अब आप अपने प्यार को देखो बैठकर कितना बिखर गया। पुरानी आदतों से प्यार तंग भी करती है, फिर भी उससे प्यार, जैसे कोई मिर्च खाता है सीसी भी करता रहता, खाता भी रहता है, दुख भी देते हैं फिर भी उससे प्यार। तो प्यार इतना बदल बिखर गया कि प्यार की वैल्यू ही खत्म हो गई, इसमें ताकत घट गई। अब बाबा क्या कहता है, समेटो। तो ये बुद्धि का सौदा नहीं है, बुद्धि तो सेंसिबल बनाती है, ये दिल का सौदा है। तो बाबा ने क्या कहा, मेरी बुद्धि में बच्चे या मेरे दिल में बच्चे? बच्चों ने क्या कहा, मेरे दिल में बाबा या मेरी बुद्धि में बाबा? बुद्धि में तो और भी बहुत कुछ होगा। इसलिए तो प्यार का ही रास्ता है, हमने बिखरे हुए प्यार को इकट्ठा करना है और एक बाबा से करना है, यही एसेंसफुल है। आखिर क्या बचेगा, आत्मा ही बचेगी, आत्मा तो खत्म नहीं होती। तब बाबा ने कहा कि अंतिम आहुति का अर्थ क्या है, अपने आत्म स्वरूप में जो कि हमारा अविनाशी आत्म स्वरूप है, ओरिजिनल आत्म स्वरूप है, उसमें टिकना। और बाबा ने आसान करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ रच दिया कि आत्मा बन के क्या करेंगे, शरीर में रहो और सिर्फ अपने संबंधों को शुद्ध कर लो, लौकिक को भी अलौकिक कर लो, अलौकिक तो बाबा देता ही है, तो अलौकिक ये ब्राह्मण जीवन अलौकिक है, इसका प्यार भी अलौकिक है, ज्यादा रिश्ते नहीं है, एक बाबा और बच्चे, और इसका सुख भी अलौकिक है, दुनिया वाला सुख नहीं है, इसमें तो प्रेम का सुख है, शांति का सुख है, सुख का सुख है, शक्तियों का सुख है, उस तरह का सुख है जिसमें आपका कुछ लगता भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हम सब अंतिम आहुति मन से ही देनी है। अंतिम आहुति का ये मतलब नहीं है कि आप शरीर छोड़ दें, नहीं। अब जैसे दादी जानकी हैं, दादी गुलजार हैं, वो तो आपके सामने हैं, बाकियों की तो आपने हिस्ट्री सुनी होगी, दादी रतन मोहिनी जी हैं, ये तो आपके सामने हैं, मधुबन में आप इसीलिए आते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, अंतिम आहुति दी हुई है, और निमित्त बन के क्या कर रहे हैं, दूसरे से आहुति दिलवा रहे हैं। हम उनको देखते हैं, दादी जानकी 98 ईयर्स की एज, आपकी तो शायद बहुत कम होगी, किसी किसी की होगी, उस एज में भी कर्मों का हिसाब भी आता है, शाम को शरीर चलता नहीं है, आकर के क्या करते हैं, एग्जाम्पल है प्रकृति को जीतने की, हिसाब किताब की कोई बात नहीं, शरीर अपना काम कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं, आत्मा को मुक्त रखने की, तो जीवन मुक्ति और मुक्ति हमें यही अनुभव करनी है, यहाँ ही हमें स्वच्छ संस्कार धारण करने हैं। इसलिए बहुत आसान तरीका बाबा ने बताया है, सब कुछ छोड़ के एक बात, बाबा कहता है ब्रह्मा ने यज्ञ रचा, ब्रह्मा ने संकल्प किया सृष्टि रच दी। कौन सी सृष्टि रच दी? ब्रह्मा ने संकल्प करके कोई पुरानी सृष्टि नहीं रची, ये तो हो गई है, शुद्ध संकल्प किया। तो बाबा भी हमें क्या कहता है, हर एक ब्राह्मण फ्री है, केवल एक ही ध्यान रखना कि सतयुग में क्या होता है, सर्वगुण संपन्न फरिश्ता भी अवगुण नहीं रखता, सिंपल है, जहां जाना है, जो यज्ञ की प्रसादी है, जो अंतिम आहुति पर ही प्रसादी बांटी जाती है, और अंतिम आहुति सबको इकट्ठे मिलके देनी है, क्योंकि एक दो चार सौ ने तो दी, परंतु सारे विश्व को चेंज करने के लिए इतनी जबरदस्त शुभ भावना की पावर चाहिए, इतना सेंट चाहिए जो खुशबू फैल जाए, लोकल सेंट नहीं। तो इसलिए सेंट बनने के लिए हमें क्या करना है, शुद्ध शुभ संकल्प, मन आपका है, आत्मा में मन है, और आत्मा ने ही जाना है, फरिश्ता भी आत्मा नहीं बनना है, यही ट्राई करो, परम धाम में भी आत्मा नहीं जाना है, यही बॉडी से डिटैच होने की ट्राई करो, देवता भी आत्मा नहीं बनना है, सतयुग में भी सैर करो, बाबा ने हमको ड्रिल सिखाई है, चेक करो, जब हम आत्मा स्वरूप में परम धाम में बैठते हैं थोड़ी देर भी तो मन टिकता है, फरिश्ते रूप में बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए भी तो मन टिकता है, इधर उधर तो नहीं भागता। सतयुग में जाते हैं तो मन वहां टिकता है, इधर उधर तो नहीं भागता। तो हमने ही ये सारा पाठ लंबा 5000 वर्ष का बजाया हुआ है। दुनिया में किसी आत्मा को पता नहीं ब्रह्मा कितने वर्ष का है, परम धाम कहाँ है, सतयुग कहाँ है, अब क्या है, हमको तो पता है। तो बाबा कहते हैं उस पावर को यूज करो, योग लगाने का तरीका भी बताया है, इसलिए इतना ही ध्यान रखें कि हमारे मन में शुभ भावना और शुभ भावना रहे, कामना रहे, बस। परिस्थिति कोई भी आए, व्यक्ति कोई भी आए, ख्यालात कोई भी आए, पिछले संकल्प जाके कुछ भी हो, अगर हम जैसे खराब चीज को साफ किया जाता है तो खूब पानी डालते हैं, खूब पानी डालते हैं, वो चीज मैल धुल जाता है। अग्नि में डाल दो तो बाबा ने कल भी मुरली में कहा है कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए अग्नि जलाई जाती है, तो उसके सारे अलॉय, उसमें चांदी मिली हो, तांबा मिला हो, कुछ भी मिला हो, बह जाते हैं, गोल्ड प्योर रह जाता है, और प्योर गोल्ड का जेवर भी प्योर बनेगा। इसलिए हमने अपने मन को प्योर गोल्ड बनाना, बल्कि डायमंड बनाना है, ताकि डायमंड तो सख्त होता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं आता, चमकता भी है। तो हम तो डायमंड एज में हैं, इसलिए बाबा कहते हैं आप सब महायज्ञ में आए हो, तो आहुति मैंने संपूर्ण आहुति, संपूर्ण आहुति मैंने संपूर्ण कमियों की आहुति, पुराने संस्कारों की आहुति, और पक्का दृढ़ संकल्प कि अब ये हमने वापस नहीं लेना। आग में डाला स्वाहा हो गया, तो ये महायज्ञ है, कल बाबा भी आएंगे, तो आप सब लोग आते भी हम इसी एम से हैं कि एक बारी ऐसा बन के जाए जो दुनिया में जाके वैसे ही बनाए, ना कि पुरानी चीज भूत वापस आए। तो इसके लिए आप तैयारी करिए, हमें संपूर्ण आहुति देनी है और शुभ भावना शुभ काम। कई ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं हमें इतना तंग करते हैं, इतना दुखी करते हैं, हमारे लिए इतना झूठ बोलते हैं, हमारा रूप बदल के दिखाते हैं कि हमारे मन में उनके लिए शुभ भावना उठती है। अब क्या किया जाए? अब आप देखो, अगर हम अपने मन में, मन तो आपका है, अशुभ सोचते रहेंगे, दूसरों के अवगुण धारण करते रहेंगे, तो आपके मन में क्या भर जाएगा? आपका मन अच्छा है, आपकी बाल्टी साफ है, लेकिन अगर आप अपनी बाल्टी में पड़ोसी का कूड़ा करकट, दूसरे का कूड़ा करकट भर लेंगे, बाल्टी अच्छी हुई तो क्या हुआ, भरा क्या उसमें, वो तो कूड़े की बाल्टी हो जाएगी। सतयुग में कूड़ा होता है, आपके ख्याल में स्वर्ग में कूड़ेदान होता है, डस्टबिन होता है, या गार्बेज डंप होता है, जैसे आप सड़कों में देखते हैं, स्वर्ग ही है वो तो। तो कूड़ा पैदा कहाँ होता है? मन में। तो आज के मनुष्यों के मन में ऐसी मशीन लगी हुई है, माया ने लगाई है, जो अच्छी चीज को भी खराब कर लेती है, बेस्ट को भी वेस्ट कर देती है। और हमारे मन में बाबा ने वो मशीन लगाई है जो वेस्ट को भी बेस्ट कर देती है, सारी पुरानी दुनिया किचरे जैसी स्वर्ग बना देती है। तो हमको वो मशीन जब मिल रही है तो हम उल्टी मशीन क्यों लगाएं? इसलिए मन में कोई चीज कैसी भी हो हमें उसको बेस्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? संकल्प से। ब्राह्मणों के पास संकल्प शक्ति है, शुद्ध संकल्प, और शुद्ध संकल्प से कुछ भी आए मुझे अंदर क्या धारण करना है वो कौन है कैसा है वो जाने, मैंने क्या लेना है, मुझे तो अपना जीवन ठीक करना है ना। मैं तो यज्ञ का रक्षक मैं हूँ, बाबा ने यज्ञ मुझे दिया हुआ है तो उसकी आहुति उसमें डाल दो। तो इसलिए अग्नि आपके पास है, बाबा की लगन आपके पास है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जो यज्ञ रचता है यज्ञ को संभालता है ये तो ध्यान रखता है कि अग्नि जलती रहे ठंडी ना हो जाए। इसलिए लास्ट बात ये है, हम मन वाणी और कर्म तीन चीजें हम करते हैं। हमारे मन में संकल्प उठते हैं, वाणी से हम कुछ बोलते हैं, कुछ उसके बाद कर्म में आता है। अब देखिए वाणी में क्या आता है, जो मन में होता है। कितना भी हम चेंज करके उसको मीठा करके बताने की कोशिश करें लेकिन दिल की बात चेहरे पर आ जाती है, जुबान पर आ जाती है। इसलिए अपने मन में, आज हमने गीत भी सुना, ओ बाबा तुम कितने निरंकारी हो, अपने को सेवाधारी कहते हो, तो ब्राह्मण का क्या ना, हमारा क्या कर्तव्य है, विश्व की सेवा। तो हमारे अंदर जो भी संकल्प उठे वो सेवा का उठे। दुनिया में स्वार्थ के उठते हैं, वो सेवा भी स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ नाम मिल जाए, कुछ मान मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कुछ वस्तु मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, वो सेवा नहीं होती। बाबा कहता है विश्व सेवाधारी, तो हमारे मन में जो भी संकल्प उठे, मान लो आप कहीं भोजन के लिए बैठ रहे हैं, दूसरा भी आके बैठ रहा है, दुनिया वाला क्या करेगा, पहले मैं बैठ जाऊं वो ना बैठे, हम क्या करेंगे, पहले उसको बैठाएंगे। जो ही आपने उसको बैठाया आपके अंदर वो खुशी आएगी, कमाल की खुशी आएगी। तो सेवा भाव मैंने दूसरे को आगे रखना, दूसरे को सम्मान देना। ऐसे नहीं, जब मैं होती है तो व्यक्ति मैं बोलता है, जब सेवादारी होता है। दुनिया में भी देखो, किसी बड़े होटल में जाओ, बड़ी अच्छी वर्दी पहने होते हैं सेवादारी, ऐसे झुक के सर बोलते हैं, वो तो प्रोफेशन से बोलते हैं। हमारा तो ये धर्म है, तो ब्राह्मण का धर्म और कर्म क्या है, सेवाधारी संकल्प में। और जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बोल में बाबा कल भी मुरली चलाई थी, आपके बोल कैसे होने चाहिए, फूल जैसे, लोग बोल सुन के ठंड पड़ जाए उनको, जैसे गुलजार दादी बोलती है, हैं? थोड़े बोल। तो इसलिए हमारे बोल कल्याणकारी होने चाहिए, किसी का अकल्याण अशुभ ना हो जाए, उसको मल्लम लगाने के होने चाहिए संतुष्ट, तो बोल हमारे विश्व कल्याणी के होने चाहिए। संकल्प विश्व सेवाधारी, बोल विश्व कल्याणी, और कर्म चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, लौकिक हो अलौकिक हो, हर एक अपने कर्म की क्वालिटी देखनी है। चाहे हम बर्तन ही मांज रहे हो, हमारे कर्म में बर्तन भी मांजे तो ये नहीं मैं बर्तन मांज रहा हूं, नहीं, अरे किसके बर्तन मांज रहा हूं, इससे किस किस का फायदा होने वाला है, ये तो मुझे भाग्य मिला है, मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मिला है। आजकल लोग नेता लोग झाड़ू उठाते हैं अभिमान तोड़ने के लिए, जो बड़ा करेगा छोटे उसको देख के करेंगे। तो हमारे कर्म विश्व परिवर्तन के होने चाहिए। विश्व परिवर्तन हमें अपने कर्म से दिखाना है। तो विश्व परिवर्तन तब बाबा कहता है आपकी अंतिम आहुति का मतलब क्या है कि हमारे से दूसरे को बाबा की झलक मिले कि बाबा कैसा है, उनको लगे कि ऐसा है, तो फिर हमारी अंतिम आहुति चलेगी और आप फील करेंगे कि अलौकिक खुशी क्या होती है, उसकी भेंट में दुनिया के सब सुख झूठे। ओम शांति।